ओम शांति। आप सभी यहाँ इस सुंदर परिसर में दो दिन से बहुत सारी ज्ञान की चर्चा भी सुन रहे हैं, साथ साथ जो सुबह का सेशन है ये विशेष रूप से मेडिटेशन का है, क्योंकि ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर हमारा बार बार ध्यान खिंचवाया गया वो है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक शक्ति वो हमारे जीवन में कैसे आए। तो उसमें विशेष रूप से आप सबको आध्यात्मिकता की तरफ कि कैसे जीवन में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए, और वो भी पॉजिटिव चेंज, तो उसके लिए जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके बिना हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और अध्यात्म का अर्थ भी आप सबको बताया कि आत्मा का चिंतन है, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ स्पिरिट, खुद को जानना, जिस जो लेसन आपको कल सुबह के सेशन में मिला। फिर आध्यात्मिकता में मेन चीज मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है जानने की। सबसे पहला खुद को जानना, जो आपको आत्मा के बारे में कल सुनने को मिला। उसके बाद जिसमें हमको अपना मन लगाना है, जिसमें अपना ध्यान लगाना है, वो परमात्मा कौन है,
ये बीच वाला लेना शुरू।
तो जिसमें हमें मन को लगाना है वो कौन है, सेकंड गॉड। और तीसरी चीज है कि उसके साथ ध्यान लगाने की विधि क्या है। जब हमें तीनों के बारे में पता होता है तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो खुद की पहचान कल आपको मिली, आज का जो सेकंड लेसन है वो है ईश्वर की पहचान, वो परमपिता परमात्मा कौन है। तो जहां तक आत्मा की बात है तो हर इंसान जानता है कि भाई सबके अंदर एक आत्मा है, सबके अंदर एक ज्योति है। गीता में भगवान ने इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया है कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन आत्मा के साथ साथ परमात्मा की जो पहचान है उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारा, कि जो है ना, कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान कण कण में है, कोई कहता है भगवान नाम रूप से न्यारा है। तो बड़ी कंफ्यूजन है कि आखिर भी ईश्वर कौन है। और जब तक हमें उसकी सत्य पहचान नहीं होगी तब तक हम मन को उसमें एकाग्र नहीं कर सकते हैं। देखो, बिना परिचय के तो हम याद नहीं कर सकते ना। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपका मन उन तक ही जाता है जिनको आप जानते हो, जिनसे आप परिचित हो, जिनको आप पहचानते हो, उन्हीं में मन लगता है ना। तो अक्सर करके हम सबके मन के अंदर एक शिकायत बनी रहती है कि हम भगवान को याद तो करते हैं लेकिन भगवान की याद में मन एकाग्र नहीं होता। देखो, सुबह से शाम तक हम कितने लोगों को याद कर लेते हैं, कितनी वस्तुओं को याद कर लेते हैं, कितने स्थानों को याद कर लेते हैं। हम कभी किसी के लिए शिकायत नहीं करते कि उसकी याद में मेरा मन नहीं लगता। लेकिन भगवान के लिए ये शिकायत क्यों रहती है? हम उसको याद करना चाहते हैं, चाहते ना सब कि भाई मेरा ध्यान भगवान में लग जाए, लेकिन चाहते हुए भी मन की एकाग्रता उसमें होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? उसका मूल कारण क्या है कि हमें उसका जो एक सत्य परिचय है वो नहीं है, पहचान नहीं है। और आज की दुनिया में तो इतने सारे भगवान हैं कि ये निश्चित करना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन से भगवान में मन लगाऊं, है कि नहीं, है ना। राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, अपने गुरु को भी भगवान मानते हैं। और भारत के अंदर तो हर स्त्री का जो पति है उसको भी क्या कहते हैं, पति परमेश्वर। तो आधी आबादी तो वो भी परमेश्वर हो गई। तो इतने भगवानों की भीड़ में आखिर वो एक ईश्वर कौन है, जिसको कहते हैं ना गॉड इज वन गॉड इज ट्रुथ, वो एक ईश्वर, वो एक परम पिता परमात्मा आखिर कौन है। जब हमें उसकी पहचान मिलती है, उसका सत्य परिचय मिलता है, तो हम अपने मन को सहज ही उसमें लगा सकते हैं। तो इसलिए सभी तैयार हैं उस ईश्वर पिता के परिचय के लिए। खुद की पहचान कल सबको अच्छी तरह से मिली, मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, किसी से भी परिचय पूछा जाए आप कौन हो हैं? तो भले हमारा जो दुनियावी परिचय है, इस बॉडी का परिचय है, प्रोफेशन का परिचय है, अपनी जाति धर्म का है, वो केवल इस शरीर का है, लेकिन मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर एक जागती ज्योत हूं, एक चेतन शक्ति हूं। कहां रहती है आत्मा इस शरीर में? मस्तक में रहती है। आत्मा का ओरिजिनल स्थान कौन सा है? हम सबका असली घर जहां से हम उतरे हैं इस सृष्टि मंच पर, वो हमारा असली घर कौन सा है? परम धाम है ना। इस आवाज की दुनिया से दूर, जिसका हम आरती में रोज गायन करते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, है ना। भगवान का भी वही निवास स्थान है और हम सबका भी वही है। इसलिए हम कहते हैं संसार मुसाफिर खाना है ना। हम सबको एक दिन वापस जाना है। तो मुसाफिर खाने में मुसाफिर जो है कितना टाइम रहता है? कुछ समय ही रहता है, लेकिन उसका असली ठिकाना अलग होता है, जहां वो जाकर के विश्राम करता है। तो हम सबका भी जो असली ठिकाना है वो परम धाम है। और परम धाम से जब हमारी आत्मा आई थी, तो उस समय वो कुछ पूंजी लेकर के आई थी, श्रेष्ठ संस्कारों की पूंजी है। तो वो संस्कार कौन से थे हमारे अंदर? मुख्य रूप से कल 7 गुण बताए होंगे, है ना। कौन कौन से थे? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये 7 जो श्रेष्ठ संस्कारों की पूंजी है वो आत्मा लेकर के आई थी। और आत्मा की 3 मुख्य चैतन्य शक्तियां बताई थी। वो कौन कौन सी थी आत्मा के अंदर? 3 चेतन शक्तियां कौन कौन सी थी? 3 शक्तियां कौन बताएगा? मन, आगे बोलो, बुद्धि और संस्कार। तो वो जो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, उसी के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है।
ये फॉन्ट्स चेंज हो गए शायद, फॉन्ट्स चेंज हो गए।
चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये टेक्निकल चीजें है ना, इनमें कुछ ना कुछ कोई बात नहीं, हो जाएगा चेंज। अच्छा, तो फिर आज का जो मुख्य विषय है हमारा, वो है ईश्वर पिता की पहचान, कि वो कौन है। देखो, जब इतनी सारी मान्यताएं हैं, तो ये निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर भी सत्यता क्या है। तो देखो, किसी भी चीज की सत्यता को प्रमाणित करना हो, तो उसके लिए कुछ प्रमाण होते हैं, कुछ प्रूफ होते हैं। अगर कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूं, हर कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर हूं, है ना। डॉक्टर है तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा, उसके पास बीमारियों का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, दवाइयों का ज्ञान होगा, है ना, कैसे किसकी ट्रीटमेंट करनी है वो अनुभव होगा, तभी उसको डॉक्टर कहेंगे। तो ऐसे आज तो हर कोई भी, कितने सारे साधु संत गुरु मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं ही भगवान हूं। तो इसलिए हमारे पास कोई पैमाना, कोई कसौटी होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम विचार करें कि आखिर भी वो एक परमात्मा, एक ईश्वर, वो भगवान कौन है, है ना। तो परमात्मा की पहचान के लिए आपको कसौटी के रूप में कुछ बातें देंगे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है, जिस भी रूप में भगवान को याद करता है ना, परमात्मा उसको कुछ ना कुछ अनुभूति तो करा ही देते हैं, कुछ ना कुछ, और फिर वो सोचता है बस यही भगवान है। किसी को हनुमान जी के के भक्त हैं, हनुमान जी से उसकी कामनाएं पूरी हुई तो सोचेगा बस हनुमान जी सबसे बड़े हैं। किसी की देवी से कामना पूरी हुई तो सोचेगा देवी सबसे बड़ी शक्ति है। कोई श्री राम जी का भक्त होगा वो सोचेगा राम सबसे बड़े हैं, तो इस तरह से। लेकिन संपूर्ण रूप में वो ईश्वर क्या है? तो बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनते थे कि एक बार किसी गांव के अंदर हाथी आ गया। अब गांव में बड़ी उत्सुकता होती है ना, सब लोग घरों से निकल निकल के आए, बच्चे भी आए, सब कहते थे चलो चलो हाथी को देखते हैं। तो उस गांव में 5 अंधे लोग थे, सूरदास, जो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे। ऐसा होता ना, इकट्ठे चलते हैं हाथ पकड़ के। तो जो है वो 5 जो अंधे व्यक्ति थे तो वो भी हाथी को देखने गए। उत्सुकता होती है ना, भले नेत्र नहीं थे पर फिर भी उत्सुकता होती है, वो सब हाथी को देख रहे हैं तो हम भी देखेंगे। तो जब वो हाथी को देखने गए तो आंखें तो थी नहीं, तो कैसे देखा होगा। सबने हाथी को स्पर्श किया, उसको छुआ, और उसको छुआ तो किसी का हाथ कहीं लगा, किसी का हाथ कहीं लगा। और उसको देखने के बाद बड़े खुश हुए, भाई हमने स्पर्श किया है ना, बड़े खुश हुए। तो जो है कुछ समय के बाद, यहां एक चीज और दिखाई है, परम सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। तो आज की दुनिया में ये एक व्यक्ति दिखाया है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसमें भगवान के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। कोई कहता है ब्रह्म ही ईश्वर है, कोई कहता है भगवान प्रकृति ही भगवान है, कोई कहता है जितने भी इष्ट देव हैं वो सब भगवान है। भारत में 33 करोड़ देवताओं का गायन है। कोई कहता है भगवान का कोई नाम रूप है ही नहीं, वो नाम रूप से न्यारा है। कोई कहता है अगर भगवान है तो उसे सिद्ध करके दिखाओ, जैसे कि भगवान भी लेबोरेटरी के अंदर प्रूव करने की कोई चीज हो, है ना। तो ये बहुत सारी मान्यताएं। तो एक बुद्धिजीवी प्राणी अलग अलग कॉलम में लिखी हुई है न्यूज़पेपर में, जब वो पढ़ता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर भी भगवान क्या है, ईश्वर कौन हो सकता है। तो उसी के लिए मैं कह रही थी हमारे पास कोई पैमाना होना चाहिए। तो हम हाथी की स्टोरी सुन रहे थे, 5 अंधे व्यक्ति अलग अलग जगह स्पर्श करते हैं, फिर जब वो वापस आते हैं तो आपस में विचार करने लगे कि हाथी कैसा था। अब हर किसी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने हाथी को स्पर्श किया है। तो एक ने कहा हाथी जो है वो तो रस्सी जैसा होता है, कहां हाथ लगाया है, पूंछ को। फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं तुम पता नहीं क्या देख के आए हो, हाथी जो था वो तो खंबे जैसा था, पांव को हाथ लगाया। तीसरे ने कहा नहीं नहीं मैंने हाथी अच्छी तरह देखा था, हाथी तो सांप जैसा था, कहां हाथ लगाया, सूंड को। फिर पांचवे ने कहा नहीं नहीं हाथी जो था वो तो सूप जैसा था, वो पंखा होता है ना, हाथ का पंखा, कान को हाथ लगाया। अब ये पांचों ही गलत नहीं थे क्योंकि सबने छुआ था, स्पर्श किया था, लेकिन ना तो रस्सी हाथी होता, ना खंबा हाथी होता, है ना, ना सांप हाथी होता, और ना इन पांचों को मिला दे तो हाथी बनता। तो ये पांचों सही नहीं थे। क्यों सही नहीं थे? क्योंकि इनके पास संपूर्ण हाथी को देखने वाली आंखें नहीं थी। ठीक यही स्थिति आज इंसान की है, जिस रूप में भी उसको थोड़ी अनुभूति होती ना, कहेंगे बस मेरे गुरुजी मेरे भगवान है, बस जिस रूप में अनुभूति हुई। लेकिन संपूर्ण रूप से उस ईश्वर को समझने के लिए हमारे पास भी वो ज्ञान का नेत्र चाहिए। तो वो एक ईश्वर कौन है उसको पहचानने की कसौटी, और उस कसौटी के अंदर सबसे पहली बात है कि भगवान उसे कह सकते हैं जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य का मतलब जिसको हिंदू भी प्रेम से स्वीकार करे, मुस्लिम भी करे, सिख भी करे, ईसाई भी करे, जिसको हर कोई कहे कि हाँ ये मेरा है। जिसको कुछ लोग मानते हो उसे भगवान नहीं कह सकते हैं। फिर दूसरी पहचान, भगवान उसे कह सकते हैं जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, उसके ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम है ना वो, तो वो सबका मात पिता है, लेकिन उसका कोई मात पिता ना हो, जो सबका गुरु हो लेकिन उसका कोई गुरु ना हो, क्योंकि अगर उसका गुरु होगा तो वो गुरु उससे बड़ा हो गया। ईश्वर तो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा, जो सबका शिक्षक हो लेकिन उसे शिक्षा की आवश्यकता ना हो, जो सबका रक्षक हो लेकिन उसे अपनी रक्षा की जरूरत, उसे किसी सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े, तो वो भगवान हो सकता है। फिर तीसरी पहचान है कि भगवान उसे कह सकते हैं जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो, पहले क्या हो चुका, अब क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होगा, तीनों कालों को जानता हो। इसीलिए देखो, जब किसी चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं ना, तो अक्सर हम क्या बोलते हैं, गॉड नोज, भगवान जाने, वो सब कुछ जानता है। चौथी पहचान है, भगवान उसको कहेंगे जो सबका दाता हो, जिसके पास इतना विशाल भंडार हो कि वो सबको देकर के भी कभी खाली ना हो, सबका दाता हो, सागर के समान, सागर का पानी कभी खत्म नहीं होता, नदी नाले सूख सकते हैं, सागर सदा भरपूर रहता है, तो जो सागर की तरह था हो। इसलिए भगवान के जो गुण है ना, वो अनंत गुण है, और उसी के लिए कबीर जी ने बड़ी सुंदर महिमा की है कि अगर सारी धरती को कागज बना लो, सारे वृक्षों को कलम बना ले और सारे समुद्रों को स्याही बना ले, और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती उस ईश्वर का गुणगान करे, तो भी पूरा नहीं हो सकता। यानी उसकी गुण और शक्तियां अनंत हैं, सागर के समान। और पांचवी पहचान है कि वो सबसे न्यारा है। तो इस न्यारे से क्या मतलब है, कि सबसे पहले वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, क्योंकि अगर वो भी इस चक्कर में उलझ जाए तो हमें इस चक्कर से कौन बचाए, तो भगवान जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। अगर वो जन्म नहीं लेता, अगर वो जन्म ले ले तो वो हिंदू फैमिली में पैदा हो गया तो मुस्लिम उसे अपना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया तो हिंदू उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान इस चक्र से बिल्कुल न्यारा है। अगर वो जन्म नहीं लेता तो उसका हमारे जैसी आकृति, हाथ पैर आंख नाक वाला रूप भी नहीं हो सकता, और अगर उसका शरीर नहीं है हमारे जैसा तो वो कर्म भी नहीं करता, तो कर्म और उसके फल से भी वो न्यारा है। अगर कर्म नहीं करता, फल नहीं मिलता, तो पाप पुण्य भी नहीं बनता, तो पाप पुण्य से भी न्यारा है, सुख दुख से भी न्यारा है। जो सबसे न्यारा है वो भगवान हो सकता है। ठीक है, ये पांच कसौटी ठीक लगी भगवान को पहचानने के लिए। ये हमारे सभी शास्त्रों ने, विद्वानों ने, महान मनीषियों ने उस ईश्वर के बारे में कही है, स्वीकार की है, है ना। तो जैसे कहते ना, फ्रॉम नोन टू अननोन, जो हम जानते हैं उससे हम जो नहीं जानते वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे बचपन में आपने स्कूल में जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो एज्यूम करते थे ना, मान लो घोड़े की कीमत 100 रुपए, और फिर जो उसकी ओरिजिनल कीमत है वहां तक पहुंचते थे। तो इसलिए इस कसौटी के आधार पर हम विचार करेंगे कि वो सत्य ईश्वर कौन है। तो अब हम उसके परिचय पर आते हैं, फिर इस कसौटी को लागू करेंगे। ठीक है, तो भगवान जो है ये परमात्मा का इधर स्वरूप दिखाया है कि वो भी एक जागती ज्योत है। जैसे आत्मा का रूप कल हमने सुना ना, वो एक ज्योति है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट। परमात्मा भी रूप में वैसा ही है जैसी आत्मा है, क्योंकि बाप और बच्चे की शक्ल मिलती जुलती होती है, एक जैसा होता है। गाय का बच्चा गाय जैसा, भैंस का बच्चा भैंस जैसा। तो हम आत्माओं का पिता, हम जैसा और हम उसके जैसे हैं। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा जो पिता है परमात्मा वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश पुंज है, वो एक दिव्य ज्योति है। लेकिन वो अनंत गुणों का सागर है, ये चारों तरफ उनके अनेकानेक गुण लिखे हुए हैं। वो सुख दाता है, वो शांति दाता है, वो पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, महाकालेश्वर है, अनेक नामों से उसकी हम महिमा करते हैं। क्योंकि भगवान का शरीर नहीं है तो उनका जो नाम है वो क्या है, गुणवाचक है। कैसा नाम है ये भाई जी को जागृत कर दो। तो नाम कैसा है उनका, परमात्मा का, जो उनके गुण है वही उनके नाम है, ठीक है ना। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, है ना, हर कोई अपनी अपनी भावना से उसको किसी भी नाम से याद करता है, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर। लेकिन जैसे किसी के कितने भी नाम हो पर एक मुख्य नाम होता है, तो भगवान का वो जो एक मुख्य नाम है वो है शिव। क्योंकि शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। जो कल्याण करता है वो सुख भी देता है, शांति भी देता है, है ना, वो मुक्ति भी देता है, सब कुछ करता है। तो एक मुख्य नाम है शिव। और उसके जो गुण हैं वो अनंत हैं, सागर के समान ये उनके गुण दिखाए हुए हैं। जो आत्मा के सात गुण बताए थे ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, परमात्मा इन सभी गुणों के सागर हैं। उनके अंदर ये गुण अनंत हैं, सागर के समान। आत्मा के गुण शक्ति जब जब कम हो जाते हैं तो फिर से उस परमात्मा से मन को जोड़कर वो शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी आत्मा गागर के समान है और परमात्मा सागर के समान है। उसके गुण और शक्तियां जो हैं वो सागर के समान है, वो शांति के सागर, प्रेम के सागर हैं। तो इसलिए हम भगवान के परिचय में कह सकते हैं कि परमात्मा रूप में बिंदु और गुणों का सिंधु, सिंधु माना सागर, यानी गॉड इज एन ओशियन इन ए पॉइंट। वो बिंदु में सिंधु है, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है, एक छोटे से मानवीय मस्तिष्क में विशाल ज्ञान का भंडार होता है, तो ऐसे परमात्मा बिंदु में सिंधु है। अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं उसकी। तो इस रूप में ही क्या उन्हें पूरा विश्व स्वीकार करता है? और इस रूप की, पॉइंट ऑफ लाइट रूप की एक प्रतिमा हम मंदिरों में देखते हैं, जिसको हम शिवलिंग या शिवजी कहते हैं। तो देखो, शिवजी की गोल पिंडी होती है, मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं की सजी हुई मूर्तियां होती हैं, वस्त्र आभूषण होते हैं, लेकिन शिवजी के ऊपर कोई आभूषण होता है, कोई वस्त्र, कुछ नहीं, सिर्फ गोल पिंडी होती है। उसके ऊपर जाके हम दूध, जल आदि चढ़ाते हैं, और उस पिंडी के ऊपर तीन लाइन होती है जो परमात्मा के तीन परम कर्तव्यों की सूचक हैं, सृष्टि की स्थापना, पालना और संहार, जो अपनी तीन रचनाओं से, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना, और जब सृष्टि पतित हो जाती है तो शंकर जी के द्वारा उसका संहार कराते हैं, लेकिन कराने वाला वो अलग है। तो तीन जो लाइन होती है ना, उसके बीच में फिर एक बिंदु होता है, पॉइंट, यानी वो उनका ओरिजिनल स्वरूप दिखाता है कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। अब है कि क्या इस ज्योति के रूप में भगवान सर्वमान्य है, है ना, कसौटी में हमने ये बात ली थी ना, क्या पूरा जगत उनको मानता है इस रूप में? तो देखिए यहाँ वही दिखाया है सर्व आत्माओं के पिता। हम अगर ऊपर से स्वीकार शुरू करें तो सबसे ऊपर दिखाया श्री राम, जो शिव जी का पूजन किया रामेश्वरम के अंदर। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले उसी समुद्र की रेती को इकट्ठा करके शिवलिंग स्थापित किया और उस समुद्र के जल से ही सिंचन किया और शिवजी ने प्रसन्न होकर के उन्हें विजय का वरदान दिया। तो जो राम के भी इष्ट हैं, फिर दूसरी तरफ जो है अमरनाथ, भक्त लोग जाते हैं इतना कष्ट सहन करके यात्रा करके, ऊपर एक क्या होता है बर्फ की ही गोल पिंडी होती है शिवलिंग, जिसको अमरनाथ कहा, जो हम सब अमर आत्माओं के पिता हैं। फिर उसके नीचे दिखाया विश्वनाथ, काशी में जो शिवजी का भव्य मंदिर है वो विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वो है वही शिवलिंग की पिंडी, लेकिन उसको नाम दिया विश्वनाथ, क्योंकि वो सारे विश्व का की आत्माओं का नाथ है, पिता है। फिर नीचे दिखाया सोमनाथ में, सौराष्ट्र में सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें शिवजी को ही सोमनाथ कहा है, उसी गोलपिंडी को। और इसका तो इतिहास में वर्णन आता है कि इतना भव्य मंदिर था ये कि मोहम्मद गजनवी ने इसको 17 बार हमला करके लूटा और इतना था धन हीरे मोती लेकर गया ऊंट भर के 17 बार, मतलब ऐसा भव्य वो जो मंदिर है वो शिवजी का ही है। सोम कहते हैं चंद्रमा को, वैसे जो शीतलता अमृत, सोम अमृत को भी कहते हैं, जो हमें ज्ञान का अमृत देने वाले हैं। फिर नीचे दिखाया पशुपतिनाथ, नेपाल में जो शिवजी का भव्य मंदिर है तो वहां पर उन्हें पशुपतिनाथ कहा है, यानी जब हम आत्माएं पशु तुल्य हो जाते हैं, विकारों के बंधन में बंध जाते हैं, तो भगवान ही आकर के हमें विकारों के बंधनों से पाश माना बंधन, उससे मुक्त करते हैं, इसलिए उनको पशुपतिनाथ भी कहा। तो इसके अलावा भारत के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगम चारों दिशाओं में भारत की पाई जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ दिखाया कि सिर्फ हिंदू भाई नहीं लेकिन मुसलमान भाई भी जब हज करने के लिए जाते हैं, उनका जो मुख्य तीर्थ स्थान है वो मक्का है, और वहां दीवार के अंदर एक काले रंग का गोल पत्थर लगा हुआ है, उसको वो जाके टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और कहते हैं हे अल्लाह मेरा हज कबूल करना, और अपना जो भी कामनाएं होती हैं वो रखते हैं। तो ये गोल काले रंग का पत्थर उसी निराकार ज्योत की ही याद दिलाता है। उनका ये विश्वास है कि ये पत्थर जब बहिस्त से आया था तो सफेद था और लोगों के गुनाहों को लेते लेते काला हो गया। फिर उससे ऊपर हम देखते हैं बुद्ध धर्म के अंदर क्या मान्यता है ईश्वर के बारे में। तो बोधि लोग जो हैं वो एक लाल रंग के गोल पत्थर को 3 फुट ऊंचे स्टैंड पर अपने से 3 फुट की दूरी पर रखकर और ऐसे घुटनों के बल बैठ के ध्यान लगाते हैं। इसको वो कहते हैं पवित्र पत्थर चिनकोन सेकी, अपनी भाषा में कहते हैं चिनकोन सेकी, जिसका मतलब है शांति दाता। अब ऊपर हम देखते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी ने ईश्वर के बारे में क्या कहा। नानक जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन नानक जी की उंगली हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्वैर निर्भो अजोनी सैभंग गुर प्रसाद है भी सत होसी भी सत आद सत जुगाद सत, ऐसा कहकर के उस ईश्वर की महिमा की है। और ये जो महिमा के सारे शब्द हैं ये हमारी उस 5 जो कसौटी थी उसके अंदर आते हैं। एक ओंकार वो एक है, सत नाम वो सत्य है, कर्ता पुरख निर्वैर वो निर्वैर है, किसी से वैर नहीं, अजोनी जन्म मरण से न्यारा है, अजोनी स्वयंभू, वो स्वयं ही जब आता है तो स्वयं अवतरित होता है लेकिन जन्म नहीं लेता है। तो इस तरह से नानक जी ने है भी सत, मतलब वो सदा सदा है, अजर अमर अविनाशी है। तो ऐसा कहकर के महिमा की। और अंग्रेजों के धर्म गुरु क्राइस्ट जी ने ईश्वर के बारे में क्या कहा, गॉड इज लाइट, भगवान एक ज्योति है, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं तो उस ईश्वर का पुत्र हूं। भले क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को ही गॉड क्राइस्ट कहते हो, लेकिन क्राइस्ट जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, गॉड इज लाइट, ये कहकर के महिमा की। इसके अलावा यहूदी धर्म के अंदर यहूदियों के जो धर्म गुरु थे हजरत मूसा, जब उनको भगवान का दर्शन हुआ तो झाड़ियों के बीच में एक ज्योति, एक नूर, एक प्रकाश दिखाई दिया। महात्मा बुद्ध को भी जब ज्ञान प्राप्ति हुई, गया वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तप किया, तो वहां उन्होंने कहा कि मुझे प्रकाश मिल गया। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो एक ज्योत है, वो एक अखंड ज्योति है, और उस ज्योति के अंदर अनंत शक्तियां हैं। इसीलिए हम भारतवासी ज्योति को बहुत महत्व देते हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो दीपक जरूर जलाते हैं, आरती करेंगे तो थाली में दीपक जरूर रखेंगे, नवरात्रों में हम अखंड ज्योत जगाते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक ज्योति है जिसको आत्मा कहते हैं, और हम सब ज्योतियों से ऊपर एक परम ज्योति है जिसको परमात्मा कहते हैं। गीता में भगवान ने अपना बहुत स्पष्ट परिचय दिया है, यही स्वरूप बताया है। भले श्री कृष्ण के, अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़ा था, लेकिन फिर भी कहा कि तू मुझे इन चरम नेत्रों से नहीं देख सकता, न तू सकिशे दृष्टुम अनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। इसका मतलब क्या है, अर्जुन को कहा कि तू मेरा असली रूप इन चरम नेत्रों से नहीं देख सकता, उसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, और मेरा वो रूप कैसा है, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसा परम उच्यते, वो सब ज्योतियों में बड़ी ऊंची ज्योति है जहां कोई अंधकार नहीं है, वो मेरा असली रूप है। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो एक ज्योत है, वो जागती ज्योत है जिसे हर धर्म ने स्वीकार किया है, और वो निराकार ज्योति, निराकार साकार की भेंट में कहा कि हमारे जैसा साकारी रूप नहीं, लेकिन रूप अवश्य है, है? वो ज्योत स्वरूप है। वैसे भी जो पॉइंट होता है ना मैथमेटिक्स में, उसको कहते हैं पॉइंट हैज नो डायमेंशन, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, लेकिन पॉइंट पॉइंट फिर भी होता है, बिना पॉइंट के पूरा मैथमेटिक्स फेल। तो भगवान भी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लाइट, इसलिए उसको निराकार कहा, यानी उसका कोई ऐसे साकारी रूप लंबाई चौड़ाई वाला या हमारे जैसा हाथ पैर आंख नाक वाला रूप उसका नहीं है। तो वो एक ज्योति है जिसको संपूर्ण जगत की आत्माएं मानती हैं। अब जो है ज्योतिर्लिंगम के रूप में, ये द्वादश ज्योतिर्लिंगम दिखाए, ये सब उस शिव जी की प्रतिमाएं हैं, उसी ज्योत की यादगार है। और वैसे भी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो हम भाई भाई किस नाते से हैं, क्योंकि हम सबके अंदर ज्योत है, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये तो उस घर में पैदा हुए तो परिचय बना, लेकिन हम सबके अंदर एक आत्मा है, और हम सब आत्माओं के पिता वो एक परमात्मा है, जिसको कोई अल्लाह कह देता है ना, मुस्लिम उसे अल्लाह कह देंगे, यहूदी उसे नूर कह देंगे, भारतवासी उसे भगवान कह देंगे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग नामों से सब याद करते हैं, लेकिन हम सबका वो मालिक, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। अब है कि जैसे ही हम वो कहते हैं ना ज्योत स्वरूप परमात्मा है, तो शिव है उनका मुख्य नाम शिव है, तो शिव कहते ही हमारा ध्यान थोड़ा सा शंकर जी की तरफ जाता है, क्योंकि हम शिव शंकर को अब तक एक ही मानते रहे, है ना। तो वास्तव में ये एक नहीं लेकिन दो हैं। देखो नाम दोनों के अलग, एक का नाम शिव दूसरे का शंकर, फिर दोनों की शक्ल भी अलग। शंकर जी को कैसे दिखाते हैं, सर्पों की माला है गले में और जो है ना त्रिशूल है और सिर पर जटाएं हैं, चंद्रमा है, तो ऐसी आकृति हम शिव जी की देखते हैं और शंकर जी की देखते हैं, और शिव जी को हमेशा मंदिर के अंदर एक गोल पिंडी के रूप में दिखाते हैं। तो नाम भी दो, रूप भी दो, कर्तव्य भी दो। शिव तो है ही कल्याणकारी और शंकर जी के लिए कहते हैं संघारकारी। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दे तो सृष्टि में प्रलय हो जाए, कर्तव्य भी अलग। और फिर देखो शंकर जी को समाधि में ध्यान में बैठे हुए दिखाते हैं, कैलाश पर्वत पे बैठ के निरंतर जाप करता है ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो। अब जो ध्यान और समाधि है वो ना तो अपनी बराबर शक्ति की लगाई जाती और ना अपने से कम शक्ति की। ध्यान किसका लगाया जाता है, अपने से ऊंची शक्ति का। तो शंकर जी भी जिसके ध्यान में बैठे हैं वो है परमात्मा शिव, और इसीलिए हम उनकी शिव रात्रि मनाते हैं। और रात्रि भी किस चीज का सूचक है कि जब इस सृष्टि पर विकारों का, बुराइयों का, पापाचार का अंधकार हो जाता है, तब तब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। या फिर भगवान के रहने का स्थान दिखाया है, नीचे साकार जगत नीलाकाश है ना, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, जिसमें हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। इसके ऊपर है सूक्ष्म देवलोक, जिसमें तीन सेक्शन दिखाए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के, और उससे भी ऊपर जो तीसरा लोक है जहां अखंड लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है, जहां पर परमात्मा अपने ज्योति स्वरूप में रहते हैं और हम सब आत्माएं भी वहां अपने ओरिजिनल रूप में रहती हैं, वो हम सबके रहने का स्थान है परम धाम। और गीता में भगवान ने ये परम धाम अपने रहने का स्थान बताया है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे रहने का वो परम धाम है जहां न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा की रोशनी है ना, न तद भाष्य न सूर्यो न शशांको न पावका, न अग्नि का प्रकाश है, लेकिन जो अपने आप स्वयं प्रकाशित तत्व है। तो भगवान के रहने का स्थान कौन सा है, परम धाम। और हम सब के रहने का स्थान कौन सा है, वही परम धाम, क्योंकि बाप और बच्चे का घर एक ही होता है। तो परमात्मा के रहने का स्थान ये परम धाम है ना। इसको भी यहां दिखाया है परम धाम को, जहां बिल्कुल ज्योति स्वरूप में आत्मा निवास करती है, एकदम अपने लाइट के रूप में उस महाज्योति के समीप। अब है कि भगवान के साथ मेरा रिश्ता क्या है, क्या लगता है वो हमारा बताइए जरा। भगवान के साथ क्या संबंध है हमारा, पिता है या कुछ और भी है। उसके लिए हम क्या गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और अंत में कहेंगे त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान हमारे मात पिता बंधु सखा सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन सब संबंधों में सबसे जो प्यारा संबंध है वो कौन सा है, कि वो मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा। हम सब किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। कितनी खुशी की बात है ये, कितने आनंद की बात है, किसकी संतान है। आज की दुनिया में कोई बड़े घराने का बच्चा होता है ना, उसे बड़ा नशा रहता है, मैं फलाने मेरा मेरा फादर जो है ना मिनिस्टर है, एमएलए है ना, कुछ काम करवाना हो तो मुझे बता देना। एमएलए और मिनिस्टर का बच्चा भी इतना नशा रखता है, हम किसके बच्चे हैं बोलो जरा खुशी से, किसके बच्चे हम? भगवान के बच्चे हैं, जो सर्वशक्तिवान है, जो दाता है, जो सब गुणों का भंडार है, हम तो उसकी संतान है। तो हमें ये संबंध उसके साथ जोड़ना है। अब तक संबंध क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं थी, उसकी शक्ल कैसी है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, पूरी पहचान नहीं थी। जिसने जो कहा हमने कहा ठीक है सत वचन महाराज, लेकिन मन का संबंध उसके साथ नहीं जुड़ा। तो इसलिए ये एक बहुत सुंदर महावाक्य यहाँ सामने दिया है, एक नशे के लिए, खुशी के लिए हम फिर से अपने आप को याद दिलाएं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी तो है ना। हम गाते तो रहे, हे ईश्वर तुम मात पिता हम बालक तेरे, तोमेव माताश्च पिता, पर वो एक जो नशा और खुशी थी वो जीवन में नहीं आई। तो हमें ये पॉजिटिव थॉट प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर दोहराना है। आपने पढ़ लिया अच्छी तरह, मैं भगवान का बच्चा हूं। फिर उसके साथ रोज फील करो कि प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मैं भगवान का बच्चा हूं तो मेरी सफलता नहीं होगी तो किसकी होगी? तो इंसान का जो संकल्प होता है ना, विचार, उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, बचपन से पढ़ा है ना ये, तुम जो सोचोगे वही बनोगे। मनुष्य के एक एक विचार में रचनात्मक शक्ति होती है, क्रिएटिव पावर। जो वो बार बार सोचता है वही जीवन में घटित होता है, वही होता है, लेकिन पूरे निश्चय के साथ। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। रामायण में सबरी का नाम सुना है? सबने सुना है ना? किस किस ने सुना है हाथ खड़ा करो। सबने सुना है, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हैं सनातनी हैं, तो हम वो जानते ही हैं। सबरी, सबरी जो थी वो श्री राम जी की अनन्य भक्तिन थी, और उनके जो गुरु थे उन्होंने शरीर त्याग करने से पहले सबरी को ये कहा कि तुम श्री राम का बहुत प्रेम से ध्यान करना, भक्ति करना, और एक दिन श्री राम जी तेरी कुटिया पर आएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी गुरु जी ने, एक दिन श्री राम जी तेरी कुटिया पर आएंगे, लेकिन तू अनन्य भाव से उसे संकल्प रचना, मतलब उसको याद करना। अब सबरी ने वो गुरु जी की बात अपने अंदर पूरी तरह समा ली, और हर दिन सुबह उठते ही वो इतने विश्वास के साथ तैयारी करती थी कि जैसे अभी अभी वो श्री राम जी मेरी कुटिया पर आए कि आए, है ना। जाके जंगल से फूल तोड़ के लाती, दूर तक अपने रास्ते के आगे फूलों को बिछाती, और वो बेर तोड़ के लाती, जंगल में क्या मिलेंगे, बेर मिलेंगे, और इतनी भावना होती थी कोई कोई खट्टा बेर ना हो, मैं मेरे राम जी को खिलाऊंगी, है ना। वो ये भी भूल जाती थी, चक चक के रखती थी उनको, चक चक के कि ये झूठा हो गया, ये भी भूल जाती थी उस भाव के अंदर। हर रोज फूलों का रास्ता सजाना, बेर तोड़ के लाना, अब बस मेरे राम जी आए कि आए, आए कि आए। पूरा दिन बीत जाता था इंतजार करते, राम जी तो आए नहीं। रात को सोने से पहले वो क्या सोचती थी, संकल्प की बात बता रही हूं, ध्यान रखना, क्या सोचती थी, कोई बात नहीं, आज नहीं आए कल मेरे राम जी जरूर आएंगे। और ऐसे करते करते बरसों बीत गए, लोगों ने सबरी को पागल कहना शुरू कर दिया। वो हर दिन ताजे फूल तोड़ के लाती थी, वो बासी सब हटा देती थी, उसकी दिनचर्या ही ये थी, रोज फल तोड़ के लाती थी, रोज बेर तोड़ के लाती थी। तो लोगों ने उसको पागल कहना कि सबरी जो है ना पागल हो गई, मेंटल हो गई जिसको कहते हैं ना। लेकिन एक दिन सचमुच में श्री राम उसकी कुटिया पर आए कि नहीं आए, बोलो। वो इतनी बड़ी शक्ति राम, श्री राम जिसको भगवान का स्वरूप मानते हैं, वो खुद चल के उसकी कुटिया पर आए। ना तो उसने कोई मैसेज भेजा था, है ना, ना कोई एसएमएस किया था, आज का तो जमाना ही नहीं था, कोई संदेशा नहीं भेजा था, लेकिन खुद राम जी उसकी कुटिया पर चलकर कैसे आए, बताओ कैसे आए, आप बताइए। अब उसका संकल्प, संकल्प में इतनी शक्ति है जो भगवान को भी उतार सकता है इंसान के संग। इसीलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि रच दी भगवान ने। तो वो जो हमारे संकल्प है ना, वो बहुत पावरफुल पॉजिटिव होने चाहिए। तो उसमें सबसे पावरफुल ये संकल्प आपको दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको रोज करना है। रोज सुबह सुबह उठ करके विचार करो, मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये एक विजन बना लो, जैसे आप नीचे बैठे हो, ऊपर वो सर्वशक्तिवान भगवान है और उसकी शक्तिशाली किरणें, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और उससे मुझे शांति मिल रही है। जितने भगवान में गुण है ना, सातों मुख्य गुण, वो सारे के सारे मुझे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो कहते ना, हे गुरु जी मेरे सिर पे हाथ रख देना, कहते ना। तो उस हाथ रखने का मतलब क्या होता है, हाथ से रेज निकलती है और जितनी जिसकी पावर होती है ना, मन की शक्ति, उतनी ही वो पावरफुल तरंगे निकलती हैं और वो उसे प्राप्त होती हैं। तो भगवान की जो तरंगे हैं वो कितनी पावरफुल है, अनंत पावरफुल है, अनंत शक्तियां हैं उसके अंदर। तो रोज सुबह सुबह एक दृश्य इमर्ज करो कि सर्वशक्तिवान भगवान शिव पिता, जिसको हम प्रेम से कहते हैं शिव बाबा, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सबरी की तरह जितने विश्वास के साथ ये संकल्प करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से जीवन में प्राप्त होगी होगी, ठीक है। तो एक बार हम अभी करके देखें, करके देखें। सब अपना दायां हाथ अपने सिर पर रखो, मैं बोलूंगी आप रिपीट करना, लेकिन पूरे दिल से रिपीट करना, मन से। मैं भगवान का बच्चा हूं, प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। थैंक यू। तो देखो कितनी देर लगती है ना, रोज आंख खुलते ही पहला संकल्प ये करो, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही जो हम संकल्प करते हैं ना, पहले 10 मिनट हमारा अंतर मन उस विचार को पूरी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वही जीवन में घटित होता है। रात को सोने से पहले 10 मिनट यही अभ्यास करें सुबह उठने के बाद। दिन भर के अंदर भी मन में दोहरा लें कई बार, और कुछ भी आप जीवन में करते हो ना, पहले याद कर लो कि मैं तो सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा हूं, है ना, उस प्रभु का हाथ है मेरे सिर पर, मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप देखना इसका चमत्कार आप जीवन में फील करेंगे। तो इसलिए हमें भगवान के साथ जो अपना रिश्ता है उसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है और उस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से हमें निभाना है, ठीक है। तो आज हमें उस ईश्वर पिता की पहचान मिली, जिसको हम एक बार अच्छी तरह से फिर रिपीट करेंगे। भगवान का नाम क्या है बोलिए, परमात्मा का नाम क्या है? शिव मुख्य नाम। उनका रूप कैसा है? उनका रूप कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट। उनके गुण और शक्तियां क्या हैं? उनके अंदर अनंत गुण हैं, सागर के समान, सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर। और वो भगवान मेरा क्या लगता है? वो मेरा मात पिता, सब कुछ है वो मेरा। तो देखो, जो जीवन में प्राप्ति होती है ना, वो संबंध के अनुसार होती है। संबंध के अनुसार, अगर कोई बहुत बड़ा सेठ हो, उसकी दुकान पे कोई भिखारी जाए, है ना, कहे बाबूजी 2 रुपए दे दो, है ना, 1 रुपया दे दो, तो वो छोटे सिक्के पहले ही बाहर निकाल के रखते हैं, ले जाओ। उस सेठ की दुकान पर जो नौकर है, उसको 1 मास में तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जो सेठ का बच्चा है, उसको बिना मांगे भी देगा, वो ना भी मांगे तो भी देगा। वो कहेगा पापा 100 रुपए दे दो, खुले नहीं होंगे, 500 का भी उसको दे देगा। तीनों के लिए वो सेठ है, लेकिन जैसा संबंध वैसी ही प्राप्ति। तो भगवान से जब हम ये संबंध जोड़ेंगे कि वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं, तो बाप का सब कुछ किसके लिए होता है? बच्चे के लिए होता है। दूसरा, हम जीवन में कभी भी अकेलापन फील नहीं करेंगे। मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान भगवान है। हैं? दिन भर में भी फील करो उसका हाथ और उसका साथ, वो मेरे साथ है। क्योंकि आज के समय में इंसान को जो सबसे ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन है, उसका कारण क्या है? लोनलीनेस की फीलिंग। एक छोटा बच्चा है ना, है ना, मम्मी पापा जॉब पे गए, अकेला है, अकेलापन। यंग एज के अंदर भी अकेलापन आजकल हम देखते हैं। एक 32 साल के नव युवक को हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हुआ और वो चला गया। तो उसकी जो केस था ना, उसको स्टडी किया गया कि आजकल तो खैर नॉर्मल हो गया, अब से 20-25 साल पहले इतनी एज में हार्ट अटैक नहीं आता था। तो उसका केस स्टडी किया गया, भाई इसको इतनी यंग एज में क्यों आ गया हार्ट अटैक। तो उसकी सारी जो हिस्ट्री थी ना, उसको स्टडी किया गया। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जो उसकी पत्नी थी, शादी हुई 6 मास के बाद कहती थी पेरेंट्स से अलग रहो। अब ना तो वो पत्नी की मान सकता था, ना वो माँ बाप को छोड़ सकता था। अंदर ही अंदर किसी को कुछ कह नहीं सकता था, अंदर ही अंदर सोचता था, घुटता था। और जब अंदर ही अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, टॉक्सिक पैदा करते हैं, और आर्टरी उससे ब्लॉक हो गई। अकेलापन यंग एज में, और वृद्धावस्था में, है ना, इसका भी अनुभव होगा सबको। जब तक जॉब में होते हैं 58-60 साल तक, तब तक कुर्सी पर हैं, सब सलाम करते हैं, सर सर कह के बोलते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद घर में जो है खाली है, तो बहू बेटा कहेंगे चलो सब्जी ले आओ, हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ आओ, वापिस ले आओ, है ना, मन की सुनने वाला कोई नहीं। तो वो अकेलापन, जब आप रोज ये सोचेंगे कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान भगवान है, वो मेरा पिता है, उसके साथ मन को जोड़ेंगे, जीवन में कभी अकेलापन नहीं होगा। ठीक है, रखेंगे उसको साथ, उससे बातें करो रोज, वो मेरे साथ है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जब भगवान मेरे साथ है तो मेरी सफलता तो निश्चित है। तो उस पिता परमात्मा से जब हम ये संबंध जोड़ेंगे, है ना, मात पिता का संबंध जोड़ेंगे, दूर का नहीं, तो उसका सब कुछ हमारा है। अब तक हमने किसी ना किसी रूप में तो भगवान को याद किया था, अपने इष्ट देव के रूप में, अपने गुरु के रूप में, लेकिन जो प्राप्ति हुई ना वो सीमित हुई। वो दिखाते हैं कि एक गुरु जी जो थे उनका एक शिष्य था, तो वो रोज अपने गुरु का ध्यान करता था, और जो गुरु था वो हनुमान जी का भगत था, और हनुमान जी किसके भगत थे, हनुमान जी किसके भक्त थे, श्री राम के, और श्री राम किसके भगत थे, शिव जी के। अब इस क्रम को देखिए, शिव जी के पास अनंत शक्ति है, उनके बहुत सारे भक्त हैं, उसमें राम जी अनन्य हैं, वो कुछ शक्ति उनको देंगे, कुछ सबको बांटेंगे। फिर श्री राम जी के बहुत सारे भक्त हैं, हनुमान जी खास हैं, कुछ शक्ति उसको देंगे, कुछ औरों को भी देंगे। फिर हनुमान जी के बहुत सारे भक्त हैं, उसमें से वो गुरु वो एक है, उसको देंगे, कुछ औरों को देंगे। फिर उस गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं, वो कुछ उस शिष्य को देगा, मान लो आप ही हो, और कुछ औरों को भी देगा। अब जो शक्ति शिवजी से चली वो वाया वाया होते उस शिष्य तक कितनी पहुंची होगी, कितनी, थोड़ी सी पहुंची होगी। अगर ये शिष्य सीधा शिवजी से संबंध जोड़ ले तो, क्योंकि शिवजी तो सबके पिता है ना, हम रोज ही कहते ना, हे भगवान तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बच्चा तो अपने बाप से संबंध जोड़ सकता है, चाहे कैसा भी हो बच्चा अपने बाप की गोदी में बैठ सकता है। तो इसलिए वो शिव बोला नाथ वो मेरा भी पिता है। किसका पिता है वो, बोलो जरा अपने मुंह से, शिव जी किसका पिता है, वो मेरा पिता है। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है, शिव जी किसके पिता हैं, वो हम सबके पिता हैं, वो भगवान है, वो सर्वशक्तिवान है। तो उनके साथ अपने मन का नाता जोड़कर अपने आप को शक्ति से भरपूर करना है, रोज हर रोज वो ध्यान लगाना है उस पिता के साथ। और कल का जो विषय रहेगा वो इसी से संबंधित होगा कि उसके साथ ध्यान लगाने की सही विधि क्या है, हम कैसे मन को जोड़ें। वैसे तो देखो कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं होता है, वो मेरा पिता है मैं उसका बच्चा हूं, तो बच्चा जो है वो किसी से पूछता नहीं है कि मैं मम्मी को कैसे याद करूं, पापा को कैसे याद करूं, वो जो भी है जैसा भी है, मैला है कुचैला है, वो मां की गोदी में आके बैठ सकता है। तो हम जो भी है जैसे भी है वो शिव पिता के बच्चे हैं, वो मेरा पिता है, उसको प्यार से हमें याद करना है। और उसकी फिर भी जो एक्यूरेट जो विधि है वो हम कल का जो विशेष तीसरा जो लेसन होगा मेडिटेशन का उसमें हम सीखेंगे। तो अभी हमें कल और आज में मेडिटेशन के दो स्टेप्स हमारे पूरे हो गए, मैं कौन हूं और मेरा वो पिता भगवान जिसको मुझे याद करना है, जिसमें मन को लगाना है, वो कौन है। तो अपनी भी पहचान मिली और उस पिता की भी पहचान मिली। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल सहज याद, है ना, ज्यादा कठिन नहीं, भाई योग है ध्यान है कुछ नहीं, मैं अपने पिता को जैसे आप अपने लौकिक मात पिता को कहीं भी बैठ करके कभी भी याद कर सकते हो, तो उस महा ज्योति परम पिता परमात्मा को भी हम कहीं भी बैठ करके याद कर सकते हैं। तो अभी मैं आपकी मदद के लिए कुछ शब्द उच्चारण करूंगी, आपको वो शब्द बोलने नहीं है, लेकिन आप अंदर ही अंदर वैसा वैसा फील करेंगे। तो हम आत्म चिंतन करते हुए उस परम शक्ति परमात्मा को, अपने पिता को बहुत प्रेम से याद करते हैं। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए चारों तरफ से मन को समेट कर चले अपने अंदर की ओर, अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं इस पंच भौतिक शरीर में, मस्तक के मध्य में एक जागती ज्योत हूं, एक चेतन शक्ति हूं, एक शुद्ध आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं, ज्योति का चमकता हुआ छोटा सा सितारा मस्तक के मध्य में विराजमान हूं। महसूस करें इस मिट्टी के शरीर में, मस्तक के मध्य में एक छोटा सा सफेद सितारा चमक रहा है। यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं ज्योति सितारा आत्मा शांत स्वरूप हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मैं ज्योति पुंज आत्मा इस देह की कर्म इंद्रियों का राजा हूं। मैं आत्मा ही सारा दिन आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं, इस देह की कर्मेंद्रियों का राजा हूं। मुझ आत्मा सितारे से शांति की किरणें निकल रही हैं। मेरे आसपास के वातावरण में फैल रही है। मैं ज्योति सितारा आत्मा कुछ क्षण के लिए इस देह और देह की दुनिया से ऊपर की ओर, इस पंच भौतिक मिट्टी के शरीर के बोझ से अलग होकर मैं दिव्य सितारा उड़ते उड़ते नीले आकाश से भी पार, सूर्य चांद सितारों से पार, अपने असली घर परम धाम शांति धाम की ओर उड़ते हुए रूहानी यात्रा पर जा रहा हूं। धीरे धीरे बहुत दूर शांति धाम, असीम शांति ही शांति। देखें मन की आंखों से अपने असली घर परम धाम को, जहां अखंड लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है, असीम शांति ही शांति है। मैं आत्मा इस घर में एक चमकते हुए सितारे के रूप में, एक चमकती हुई मणि के रूप में विराजमान हूं। मेरे सच्चे पिता ईश्वर भगवान इसी घर में निवास करते हैं, इसी परम धाम में महाज्योति पुंज चमकता हुआ सितारा गुणों के सिंधु प्यारे शिव बाबा निवास करते हैं। धीरे धीरे मैं सितारा अपने पिता के समीप हूं। ईश्वर पिता शांति के सागर हैं, उनकी असीम शांति की तरंगे चारों तरफ फैल रही है। शिव पिता की ये शांति की किरणें मुझ आत्मा सितारे पर बरस रही हैं। मैं आत्मा अपने पिता के नजदीक इस शांति में स्नान कर रही हूं। ये शांति की शक्ति मुझ में समा रही है। मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। इस शांत स्थिति में सच्चा सुख है। इसी शांत स्थिति में सच्चा आनंद है। ईश्वर पिता के सानिध्य में कितनी शांति है, पवित्रता है, प्रकाश ही प्रकाश है। धीरे धीरे इस शांति और शक्ति को स्वयं में समाकर मैं आत्मा सितारा धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं। आकाश मार्ग से नीचे उतरते उतरते इस भौतिक जगत में अपने पंच भौतिक शरीर में मस्तक के मध्य में मैं ज्योति सितारा शांति से भरपूर हूं। मुझ सितारे की शांति धीरे धीरे पूरे शरीर में अंग अंग में प्रवाहित हो रही है। ये शांति की ऊर्जा मेरे आसपास के वातावरण में भी फैल रही है। मुझे सारा दिन सबके साथ शांति का व्यवहार करना है। अपना हर कर्म शांति और धीरज के साथ करना है। मुझे सबको सुख देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवे। सारा दिन इसी चिंतन में रहकर कर्म करना है। सब सुखी हों, सबका भला हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।